अब यहाँ से आगे आप देखिए कि या अयुह अन्नास के साथ पहली दफ़ा इंसानियत को खिताब है। इसका टॉपिक लिख लीजिए, रब का पैगाम उसके बंदों के नाम। अल्लाह ताला ने इस कुरान को कोई ऐसी मुबहम चीज़ नहीं रखा कि आम लोगों को समझ ना आए। तो रुकू नंबर 3 है, इंसानियत के नाम रब का पैगाम, पहली दफ़ा खिताब है या अय्युह अन्नास, ऐ लोगों अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। हमने अपने बंदे पर जो कुछ उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो, अकेले नहीं कर सकते। तो बस अगर तुमने न किया और अब तुम हरगिज़ न कर सकते और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, तो इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो कुफार के लिए तैयार की गई है, और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियाँ दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे। इमेजिनेट कीजिए अपने आप को वहाँ, ले अल्लाह आप सबको भी जन्नतों के फल दे। और हम शक्ल लाए जाएंगे तो वो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और इनके लिए इन बीवियां हैं साफ सुथरी और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म पैकेज नहीं है, ये 2 वीक्स का पैकेज नहीं है, ये लंबा पैकेज है। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की हो। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं और कुफार कहते हैं, इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है? इसके ज़रिए बहुत सारों को गुमराह करता है, वो अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ कौन होते हैं बोलिए, गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। यानी एक चौथा नाम आ गया गुमराहों का, फरमाया गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। यहाँ से आप देखिए कि आयत 26 तक जो हमने पढ़ा, पता क्या चला कि अल्लाह ताला की बयान करदा मिसालों से सहाबा कराम के ईमान में इजाफा होता था, क्योंकि वो अल्लाह से जुड़े हुए लोग थे। हिदायत के एतबार से ये जो चौथा गिरोह है ना, ये बड़ा ख़तरे में है, इनको फासिकीन कहते हैं। मुनाफिक और फासिक का फ़र्क क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं भी अक्सर कोशिश करती हूँ बता दिया करूँ। आप देखिए कि मुनाफिक के दिल में खोट होता है, ऊपर से बड़ा अच्छा बनता है, यानी वो सबको खुश रखना चाहता है। दीनदारों में आएगा तो दीनदारों का रूप बना लेगा, दुनियादारों में आएगा तो दुनियादारों का रूप बना लेगा, ठीक है। फासिक उससे भी एक दर्जा बढ़ा हुआ है, उसके अंदर से तो शर्म ही ख़त्म हो जाती है, उसको तो शर्म भी नहीं आती गुनाह करते हुए। न्यूड, फुहश, गंदा, जिस्म फरोश, गलत काम करने वाला, न्यूड फिल्में बनाने वाले, और इस तरह की बेहूदगियों को आम करने वाला कि जिसके बाद एक इंसान तसव्वुर भी ना करे, तो ये वो मुआशरे का नासूर है। कई दफ़ा बंदा सोचता है कि मच्छरों की बात क्यों आ गई। याद रखिए, फासिक किसी भी मुआशरे के मच्छर हैं, गंदगी फैलाते हैं। आज भी देखिए, नेट मीडिया और सोशल मीडिया के आम होने से क्या बच्चों की आंखें नापाक हो गई, गंदगी आम हो गई। अल्लाह सुब्हान तआला ने सहाबाए कराम की मिसालें देकर आपको मुझे क्या बता दिया कि सहाबाए का अल्लाह ताला की हिकमत में जो पोशीदा चीज़ थी ना, खैर और भलाई, इस पर यकीन था, और अल्लाह ताला का जो इल्म था उनकी नज़रों में हक था। वो कुरान की कोई आयत सुन के बहस नहीं करते थे, ये क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों नहीं, इसीलिए भी रदी अल्लाह अन्हु व रदुआन। अगर आप इस रुकू की रोशनी में देखिए तो अहले ईमान और फासिक में एक बड़ा फ़र्क है। आप अपने नोट्स के अंदर एक लाइन भी लगा सकते हैं, फ़र्क क्या है? अहले ईमान हक की दावत को फ़ौरन कबूल करते हैं, इसके बरक्स फासिकीन हक के मामले में गैर संजीदा होते हैं। पहले वाले नाफे इल्म के मतलाशी होते हैं, उनका दिल करता है हमें नफ़े वाला इल्म मिले, जबकि फासिकीन इल्म और अमल से आरी होते हैं, उनको नफ़े वाला इल्म नहीं चाहिए, उनको बेकारियात का अमल चाहिए। मोमिनीन जो होते हैं वो नेकियों के हरीस होते हैं, जबकि फासिकीन अल्लाह की इताअत से निकलता है। तो इंजाम किसका अच्छा है, किसका बुरा? साहबा के लिए कहिए रदी अल्लाह अन्हु व रदुअन, अल्लाह आपको मुझे भी उन्हीं लोगों में कर दे। फरमाया जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें काटते हैं, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, फ़कई फ़तकफ़ुरू न बिल्ला, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसरत किया और इनको ठीक ठाक सात आसमान बनाया, वो हर चीज़ को जानता है। तो ये था इंसानियत के नाम रब का पैगाम। आयत 21 से 29 तक के इस रुकू में आपने मक्की दौर का जितना कुरान नाजिल हो चुका था, 2/3 कुरान मक्का में नाजिल हो चुका था, सूरत बकरा नाजिल होने से पहले, ये उसका खुलासा था। अल्लाह की बात हो गई, नबी की बात हो गई, कुरान की बात हो गई, जन्नत की बात हो गई, जहन्नम की बात हो गई। और आप देखिए कि अल्लाह ने पहला पैगाम जो इंसानियत को दिया है वो क्या, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, इबादत करो। पहला डूज लिख सकते हैं आप, अभी तक कुरान में डूज यानी इंटरोगेटिव या सीगाए अमर में पहला हुक्म क्या है, सोबुदू औबुदू इबादत करो। सारी बातों का खुलासा रब के बंदे बन जाओ, इताअत सबमिशन बंदगी आजजी गुलामी रब के आगे ले आओ। अल्लाह ताला की इताअत इख्तियार करने का हुक्म दिया, फिर इसमें हमने देखा कि एक चैलेंज है कि कुरान जैसी किताब बनाकर दिखा दो, फिर फांसी की तारीफ हमने देखी, और दो जिंदगियां और दो मौतें, फकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाही में हमारा आलम अरबा से शुरू करके ये सेकंड फेज़ जो इस वक्त आपका मेरा चल रहा है, फिर हमें मौत आनी है, फिर कब्र में ज़िंदा किया जाएगा और फिर बिलाखिर हशर में उठाया जाएगा। ये सिर्फ इस एक आयत में हम पढ़कर आ गए कि तुम इनकार कर कैसे सकते हो, तुम्हारी तो अपनी औकात नहीं, ना इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आए ना अपनी मर्ज़ी से जाओगे। आप सोचिए तो सही, क्या आप और मैं अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए, नहीं, क्या हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, नहीं। तो फ़र्क कितना कोई बीच में, ये बीच की 30-40 साल की ज़िंदगी, उसमें भी शुरू निकाल दीजिए बचपन, आखिरी उम्र अर्जल, ये बीच की जवानी दीवानी मस्तानी जो 15-20 साल है यही नहीं संभल रहे। तो लिहाजा इस रुकू से पढ़ने से क्या अल्लाह की रज़ा के काम मिले हमें, नोट कर लीजिए, रब की बंदगी करनी है इंशाअल्लाह, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, ईमान लाना है, नेक आमाल करने, अल्लाह की बातों को हक जानना है, और ख़ुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैंने अल्लाह की गुलामी के तरीके इख्तियार कर लिए हैं, सीख लिए हैं। सारी बातों में खुलासा एंड पे यही निकलना है कि बंदे बन जाओ, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन। जब आपका दिल अल्लाह के आगे बिछने लगता है ना, मैं सोचती हूँ अल्लाह को कितना को प्यार आता होगा। देखिए जब आपको अल्लाह ताला पे प्यार आता है ना, तो उस वक्त अल्लाह को भी आप प्यार होता है। मैं सुबह से सोच रही थी कि रदी अल्लाह अन्हु पहले है फिर रदू अन है, अल्लाह पहले राज़ी होता है आप बाद में होते हैं। ये जो हमने बच्चों को गलत कॉन्सेप्ट दिया, अल्लाह मारेगा, अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह बड़ा गुस्सा करता है, उस गरीब बच्चे को क्यों कहते हैं, अल्लाह राज़ी होने के लिए तैयार है, तुम करो तो सही। और इस एक रुकू में आप देखिए कि जो मक्की दौर के लोग थे ना, तो उनके दो बड़े शिर्क थे, आबा परस्ती जिसको आप इंसेस्टर्स वर्शिप कहते हैं, जो बाप दादा करते थे वो करना, बड़ों की बातें। आज भी देखिए पढ़े लिखे दौर में हर चीज़ नई हो गई, लेकिन जहाँ रस्म व रिवाज और शादी के तरीके और कुछ मजहबी रसूमात की बात है, मेरी दादी ऐसे करती थी, मेरी सास अम्मा ये करती थी वो करती थी, अल्लाह ने इसको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारे सामने मैं हूँ नहीं हूँ ना, इसलिए ये कुछ कर रहे हो। जिस दिन कल मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, तुम देखोगे कि तुम अपनी जगह पर टिक नहीं सकोगे। तो लिहाजा इस सारे को पढ़कर आपने, मैंने अपने दिल में क्या दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे ऐसा बना ले जिससे तू पसंद करे, मुझे अपनी बंदगी के रंग में रंग दे, अल्लाह मेरे सर से पांव तक अपनी मोहब्बत का रंग डाल दे, अल्लाह मुझे वादे निभाने वाला बना दे, मुझे फिस्क से बचा दे, और अल्लाह तू मुझे अपने जीने और मरने का मकसद अता कर दे, और मैं सहाबे कराम की तरह हक सुनकर मान जाऊं और इसको कबूल कर लूं, वरना तो याद रखिए बातें ही बातें हैं। अब तरतीब के अतबार से अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, तो सूरत फातिहा में आपने दुआ की थी अहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुलासा करा देती हूँ, सूरत बकरा में अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबुल रईब फ़ीह हुदल लिलमुत्तकीन, चलो हिदायत चाहिए तो तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। फिर पहली 5 आयत में मुत्तकीन, 6 और 7 आयत में का कुफ्फार, और आयत नंबर 8 से 20 तक मुनाफिकीन, और अब आखिरी जो रुकू पड़ा है इसमें फासिकीन, यानी अभी तक हम हिदायत के अतबार से चार गिरोहों का तस्करा पढ़ चुके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंसान दुनिया में क्यों भेजा गया? हर एक का दिल चाहता है कि माजी की बातें पता चलें। बच्चे भी आपसे पूछते हैं क्या करना है क्या, तो आइए ज़रा रुकू नंबर चार को सुनते हैं, खिलाफत की जिम्मेदारियों को कैसे अदा करना है इस रुकू की रोशनी में। आयत नंबर 30 से शुरू है, वो इस काल रब्बुक लिल मलाइका, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि तू ऐसे शख्स को क्यों कर पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इन्नी आलमु मा ला तालमून। क्या जानता था अल्लाह कि खिलाफत की जिम्मेदारियाँ इंसान पूरी करेगा? फरिश्ते तो सिर्फ तस्बीहात करते हैं, लेकिन इस कायनात में अल्लाह के पैगाम को दुनिया में नाफिज करने का काम इंसान करेगा। वल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। इन सब ने कहा है, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला के आगे बहस नहीं की, बस अपने इल्म को अल्लाह की तरफ डाल दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन व आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो कुफार में से हो गया। असल थी ना, वो खुल के सामने आ गई, इबादत के लबादे में अपने आप को छुपाया हुआ था, लेकिन अपनी औकात में आ गया। और हमने कह दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ कहीं से चाहो बफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने इनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया। और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है, यानी इस दुनिया में तुम्हारा टेम्परेरी रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, ग्रीन कार्ड भी नहीं तुम्हें मिलना, पासपोर्ट की क्या उम्मीद रखते हो तुम? हाँ, हज़रत आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ने तौबा करना भी सिखा दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व हुज़न नहीं, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नुमी हैं और हमेशा इसी में रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो ये था रुकू नंबर 4, 30 से 39, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर कैसे हुआ। इससे हमें पता चला कि इंसान की हैसियत इस दुनिया में क्या है, खलीफा। खलीफा यहाँ किस सेंस में, अभी बता देती हूँ। दूसरी, इसमें हमने देखी इंसानों के बारे में फरिश्तों के अंदेशे, फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ, फिर अल्लाह ने इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत की बात की, इबलीस की हट धर्मी देखी, और अल्लाह की तरफ से हिदायत जो हम तक पहुँच गई है, हम इसके बाद क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक कितना महसूस करते हैं इसकी रोशनी में, तो देखेंगे के रदी अल्लाह अन्हु वर्दू अन में शामिल होने के लिए इस रुकू में हमें क्या कुछ मिला। नंबर एक, अल्लाह की हम्द कीजिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह कीजिए अल्लाह की, सब मिलकर बोले सुबहान अल्लाह, पूरा कहें सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अल अजीम। चलिए फिर अगला हमने सीखा अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी अल्लाह को हर चीज़ से पाक करना, फिर इसी तरह से जो गुनाह हो जाए उस पर तौबा करें, और अल्लाह ताला की रहनुमाई की पैरवी करना। हम पढ़ भी इसीलिए तो रहे हैं, जितना ज़्यादा कुरान को अपनी इसलाह की खातिर पढ़ेंगे, नींद नहीं आएगी, थकन नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक एक मिनट कीमती होगा। फिर आप देखिए कि इस पूरे हिस्से में जो आदम का किस्सा है, कुरान पाक में 9 दफ़ा आता है। आप अभी आज सिर्फ कानों से टकराने दें, ये ज़्यादा तफसील से आएगा सूरत अल अराफ में, फिर सूरत ताहा में भी आएगा। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, मैं आपको एक मास्टर प्लान बता देती हूँ। अल्लाह ने इस एक रुकू से बता दिया कि इंसान को भेजा तो दुनिया में, लेकिन उसके साथ एक ओपोनेंट, दुश्मन भी भेजा है, इबलीस, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ठका छुपा दुश्मन होता है ना, बंदे को नहीं पता चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन जो सीने पे हाथ फेरे के जी बाहर आओ ज़रा तो मैं पूछता हूँ, कितना डरना चाहिए। आज इतनी बात लिखी, क्या मुझे शैतान से इतना डर लगता है जितना किसी की धमकी सुनकर उससे डर लगता हो? नहीं। अल्लाह ने इस एक रुकू में बता दिया कि मुसलमान दुनिया में खिलाफत का हक कब अदा करेंगे, जब इल्मे वही की पैरवी करेंगे। हमारे बच्चे दुनिया की तालीम भी लेंगे और दीन भी सीखेंगे तो कामयाब होंगे। ये भी मैसेज है इसका, एक आंख दुनिया का इल्म, एक आंख दीन का इल्म, दोनों से ठीक दिखेगा। आज हमारे झुकाव है, दीन वाले सिर्फ दीन पे हैं, दुनिया वाले सिर्फ दुनिया पे, और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ने इस रुकू में आपको मुझे एक चीज़ बता दी है कि दुनिया में खैर वाले लोग थोड़े होंगे, शर फैलाने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि फसल के दानों की तरह जो कीमती लोग हैं ना, उनके खातिर भूस को लकड़ी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप देखिए, फसल में दाना बहुत थोड़ा होता है, भूसा कितना ज़्यादा होता है, तो दाने कम होने के बावजूद इतने कीमती होते हैं कि उनकी खातिर लकड़ी और भूस के ढेर को भी अल्लाह उगने और फलने का मौका देता है। इसी तरह दुनिया में खैर वाले लोग बहुत थोड़े हैं। हदीस में आता है हर 100 लोगों में से एक काम का है, जैसे ऊँटों में से हर 100 ऊँटों में से एक ऊँट काम का होता है, इंसानों में 100 में से 1 ठीक है बाकी ख़राब है, लेकिन अल्लाह ने वो ख़राब को भी इधर रख दिया, क्योंकि जो ठीक है वही असल में क्रीम ऑफ द सोसाइटी है और सहाबा उनमें से थे। लिखिए, नबी सल्लम के सामने जितनी भी दफ़ा दुश्मन आए वो ज़्यादा थे, सहाबा कराम की तादाद हमेशा कम थी, लेकिन फतह हमेशा उनको मिली। आज हम मुसलमान 2 बिलियन के करीब हैं, आपकी मेरी ये नंबरिंग हेड काउंट हमें नहीं बचाएगा। आजकल मर्दम शुमारी हो रही है कुछ घरों में, आपको भी पता चला होगा, बंदा बंदा गिन के जा रहे हैं, मुसलमान गिना नहीं तोला जाता है। मुसलमान का वजन होता है, वेट होता है, क्यामत काफिर का वजन कितना होगा? सूरत काफ में जुमे को क्या पढ़ते हैं, फला नकीम लहुम यौमल कियामती वजना, एक मोटा ताज़ा शख्स लाया जाएगा, मच्छर के पर के बराबर वजन नहीं होगा। और इसके बरक्स एक सच्चा अल्लाह वाला बंदा इतना अल्लाह को प्यारा होता है कि लोग उसका दिल दुखाएं, अल्लाह ताला उसका बदला ले लेता है। वो गलत बात भी कह देगा तो अल्लाह उसकी बात को सच्चा कर देगा। तो लिहाजा लोगों को अल्लाह से करीब करना, ये है इस्लाम, और लोगों को अल्लाह से काटना और दुनिया में खो जाना, ये गुमराही है। और आखिरी बात जो वाकये के बिल्कुल एंड से हमें पता चलती है कि हर इंसान के सामने एक झगड़ा खड़ा होता है। देखिए, फरिश्ते और इब्लीस के बीच में आदम को रखा, सजदा करो, फरिश्तों ने कुछ नहीं सोचा पूछा, अल्लाह ने कहा है तो कर देते हैं, इब्लीस अकड़ गया। आज कुछ लोग दुनिया में ऐसे ही हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, हाँ अल्लाह के आगे सजदे बहुत से करते हैं, और शजरे ममनुआ भी है। जन्नत में एक दरख्त से रोक दिया गया, कौन सा था आपको मुझे क्या लगे? जन्नत में जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए शजरे ममनुआ था ना, प्रोहिबिटेड ट्री, आज दुनिया का वो हराम है, बस 4 हैं टोटल। अब जब जन्नत में जाएंगे कोई भी नहीं होगा, खुला खाइएगा, रगदन कुलू वशरबू हनी अम बी मासलफ तुम फिलैया मिल हालिया। ये आज इम्तिहान है, वहाँ भी था, इब्लीस ने सारी जन्नत छुड़ा कर बस उस चीज़ के पीछे डाल दिया। तो यहाँ पे अब हम इंसान की तारीख पढ़ चुके, अब अगली आयतें यहाँ से लेके 10 रुकू, यानी आप अभी आयत नंबर 40 से जो टॉपिक शुरू होगा ना, आप इससे लेकर अगले 10 रुकू इकट्ठे एक ही टॉपिक लिख लें, माजी के मुसलमान, मुस्लिम्स ऑफ दी पास्ट। सूरत बकरा को अगर आप ऐसे काटें ना, तो 2 हिस्से हैं इसके, पहला पारा और दूसरा पारा। पहले पारे में माजी के मुसलमान यानी यहूद का तذکرہ है। हमने सूरत बकरा में एक दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम। अल्लाह ने उसके बदले में सूरह बकरा में पिछली कौमों में से एक कौम जो अपने बुरे आमाल की वजह से गज़ब का शिकार हुई, और अगली सूरत जब आले इमरान पढ़ेंगे तो उसमें दौलीन का किस्सा बयान किया है, तो आप लोग इसको पढ़ें। बहुत सारे लोग इरीटेट होते हैं, अपने लिए कुरान पढ़ने बैठे थे और इसमें बनी इसराइल के किस्से क्यों हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको बताऊंगी। रुकू नंबर 5 का मेन पॉइंट लिख लीजिए, हक दूसरों तक पहुंचाना और ख़ुद को भी हक से महरूम नहीं रखना। 3 दफ़ा आपको ये मैसेज मिलेगा, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे इस अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझ ही से डरो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फरोख्त ना करो और सिर्फ मुझ ही से डरो, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है, और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद के तुम किताब पढ़ते हो, तुम में इतनी भी समझ नहीं है, यानी दूसरों को कहते और खुद नहीं मानते। वस्तईन बिस्सब्री वस्सला, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये चीज़ बड़ी बोझल यानी शाक है मगर डर रखने वालों पर, जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये है जी आयत 40 से 46। या बनी इसराइल कहकर माजी के मुसलमानों को खिताब किया गया, नेमत और अहद की याद दहानी करवाई गई और अल्लाह की रज़ा पाने वाले काम करने की दावत दी गई। बनी इसराइल, जिनको आज हम यहूद भी कहते हैं, कुरान ने उनको अहले किताब भी कहा है, चुने हुए लोग थे, रियली देवर चोजन पीपल, इनको तो मान है, बात भी सच है। अल्लाह ने अपने बहुत सारे पैगंबर इनकी तरफ भेजे, और किसी गिरोह पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम होता है कि अल्लाह किसी अपने पैगंबर को उनके पास भेज दे और वो उनको अच्छी बातें बताए, जैसे आज भी अल्लाह किसी के पास अपने दीन वाले को भेज दे कि लोगों को दीन की बात बताए, ये उस गिरोह पर बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है। नबी सल्लम की आमद से पहले यहूद को अल्लाह ने अम्बिया कराम के लिए चुना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनका दीन तकलीदी दीन बन गया, रस्मी दीन था। वो कहते हैं ना, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली ना रही, फ़ख्र करने लग गए। इसीलिए अब अल्लाह इनसे चार्ज वापस ले रहा है और इनमें बार बार इनको दावत दी जा रही है कि नबी सल्लम पर ईमान ले आओ, क्योंकि इनकी किताबों में भी यही बात लिखी थी कि आखिरी नबी आएगा और तुम उसको मानोगे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की इस पुकार पे लब्बैक कहना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब उसकी कीमत पर इंसान को अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदलना पड़े, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़े, इज्जत और शर्फ की गद्दियों से अपने आप को उतारना पड़े, लीडरशिप से उतर कर आप नीचे फॉलोअर्स में आ जाएं, ये तो बड़े बड़े ना बर्दाश्त कर सके। यहूद के उलमा ने इस वक्त नबी सल्लम को नहीं माना, यहाँ नोट कीजिए, रदी अल्लाह अन्हुम। आज इस पारे का थीम इस आयत से जुड़ रहा है आपका, बार बार अल्लाह उनको कह रहा है मुसलमान हो जाओ, तुमने अपनी किताबों में पढ़ा है, तुम खुद कहते थे, कस्में खाते थे, आखिरी नबी आएगा तो मानेंगे, तुमने नहीं माना, और वो देखो अबू बकर आए तो रदी अल्लाह अन्हो बन गए, उमर आए तो मान गए। साहबा की खूबी अब समझ आई है, यहूद जो उस दौर के रिलीजियस पीपल थे, देखिए ना ये शहर है आपका, आपके शहर में बहुत सारे लोग दीन को जानते हैं, दीन के नाम से मशहूर भी हैं, तारुफ भी है उनको। मिसाल लीजिए ना, अब कोई दूसरा दीनदार शख्स आएगा, सबसे ज़्यादा किन से तवक्को रखी जाएगी खुश होने की? दीनदारों से। कौन उससे फ़ायदा उठाएगा? दीनदार। चलो हम भी फ़ायदा उठा लें, चलो हमें भी अच्छा लगेगा, कुछ हमारी भी और ग्रूमिंग हो जाए। लेकिन आपको तो असल में होता क्या है, वो बेचारे इधर उधर वाले आ जाते हैं, दीनदार अपनी गद्दियाँ नहीं छोड़ते, वो अपनी मसनदें नहीं छोड़ते, वो कहते हैं हम नीचे आके बैठे, हम इधर बैठते थे अब नीचे बैठे, हम तो लीडर थे कल हम फॉलोअर बने, हम पढ़ाने वाले अब पढ़ने लग जाएं। ये मसला था यहूदे मदीना का, तो क्यों ना अल्लाह अपने नबी के साथियों को कहे रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु। समझ आई? जिसके अंदर कोई बड़ाई का एहसास होता है ना, वो कभी दूसरे से फ़ायदा नहीं उठाता। उम्मीद ये की जाती थी कि यहूद नबी सल्लम को सीने से लगाएंगे कि देखो जो काम हम कर रहे थे तुम भी तो वही करने लगे हो, चलो कुछ हमने किया बाकी तुम कर लो, अब मिलके करते। ये जो मिलके करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं था और ये नहीं है, इसीलिए दीन के पौधे पे बहार नहीं आ रही। हर बंदा अपना एक अलग दरख्त बन के चमकना चाहता है, ये इधर है, बाग नहीं बनता, खेती नहीं बनती, और उसमें टीम वर्क है, उसमें जान जाती है, उसमें कुछ को बैक एंड पे रहना पड़ता है, उसमें कुछ को लीडरशिप से उतर कर फॉलोअरशिप में आना पड़ता है। अल्लाह ने इसीलिए उनको पीछे करके कहा जाओ तुम छोड़ो। अब आगे देखिए, छोटा सरकूता 47 से आगे दोबारा फिर वही पुकार है जो कि इधर दी गई। यहाँ आप सुनेंगे भी कि बनी इसराइल को उनकी तारीख के औराक दिखाए जा रहे हैं कि अगर तुम वाकई इस नबी को मान जाते तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी हसीन होती। रुकू नंबर 6 है, देखिए आखरत की फ़िक्र करना, ये इसमें मेन थीम है। उनके अंदर से फ़िक्र आखरत ख़त्म हुआ और मासरत के साथ, अभी जो बात मैंने की है ना, जिस बंदे को अपनी आखरत की फ़िक्र होगी ना, उसको अपना सदका जारिया बनाना है, उसका नामों से नहीं लगता कुछ। वो कहता है अगर मेरे कहने से कोई दीन की बात सीखने आता है तो मेरी कब्र में उसका अदर जाएगा, मैं किसी को बुलाऊंगी तो मेरा फ़ायदा होगा, वो तो चल पड़ेगा। लेकिन जो लोग नामों में खो जाते हैं फिर वो अपने सवाब को भी पीछे कर देते हैं। उलमा ये खुद ना सिर्फ ये कि खुद रुके मोहम्मद मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि दूसरों को भी रोकते थे, नेगेटिव प्रोपेगंडे करते थे, नहीं ना ये भी तो देखो वो भी तो, हमारे पास भी तो यही कुछ है, तुम क्या ले लोगे कर लोगे। तो अल्लाह ने अब उनको बताया कि देखो आखरत में तुमने अकेले होना है। क्या या बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, इस दिन से डरते रहो आप और मैं भी सुने। ये रवैया निकलेगा इस रुकू में से रदी अल्लाह अन्हु में शामिल होने का, क्या उस दिन से डरिए जो कि हम सब पे आने वाला है। इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना शिफात कबूल होगी ना सिफारिश और ना कोई बदला इसके इवज लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। याद रखिए जब फिक्रे आखरत इल्मे आखरत में बदल जाए तो ऐसा ही होता है। लोग आखरत का नाम भी लेते हैं लेकिन डरते कोई नहीं, अमल ना बदले तो फिर वो डर मुंह का ही होगा ना। बच्चा कहता रहे इम्तिहान होने लेकिन पढ़े ना तो क्या है उसका डर, कुछ भी तो नहीं। इसी की तरफ इशारा है। फिर उनकी तारीख का एक वर्क, और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। आजमा फिरौन रहा था और अल्लाह करे बलाओ में रब्बी को मजी, क्या पता चला कि बुरे हुक्मरान अल्लाह का अजाब होते हैं, हमारे आमाल हमारे उमाल बन जाते हैं, हम जैसे अमल करते हैं वैसे लोगों को अल्लाह हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीत फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने इसमें डुबो दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूछना शुरू कर दिया और जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। क्या पता चला कि अल्लाह बार बार माफ़ करता है, हमें बार बार शुक्र करना है। और हमने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मौजज़े अता फरमा दिए। जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, बस अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की और वो तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला है। और तुम इसे भी याद करो तुमने हज़रत मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने देख न लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे, जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो और इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें फिर एक और मौका दिया। कैसे दिया? आप देखिए कि अल्लाह इस कौम के साथ क्या करता है। फिर इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। कितनी हिरस दिख रही है अल्लाह ताला की तरफ से इनको हिदायत देने की। और क्या, ये सारे बनी इसराइल पे जो 40 साल के अंदर मुख्तलिफ मोजज़ात और इनामात थे उसका तज़किरा है। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। आज भी जो बंदा गुनाह करता है जो ज्यादती करता है अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता, नुकसान अपना होगा। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बस फरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो और जुबान से है ततुन कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। अल्लाह में नेकियां करने वाला बना दे। फिर इन जालिमों ने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाली। हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। तो क्या पता चला? आप देखिए कि इस रुकू में हमें आयत 47 से 59 में जो बातें पता चली, नंबर एक, क़यामत का दिन। आज भी जितने लोग लड़ रहे हैं ना, दीन के नाम पे, सियासत के नाम पे, विरासत के नाम पे, एक छोटा सा सांप कमरे में निकल आए ना, तो लड़ने वाले सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचाने लग जाए। आज दीन के झगड़े क्यों हैं? फिक्रे आखिरत नहीं है, कब्र के सांप पिछू याद नहीं है, बाकी चीज़ें इसी पे क्यास कीजिए। आपका मेरा काम क्या है? क़यामत को उसकी रियलिटी के साथ महसूस कीजिए। आजकल दिन ब दिन खुशू कम हो रहा है हमारा, क्योंकि हम क़यामत से नहीं डरते। फिर इनामात भी अल्लाह ने बता दिए, और इनामात पर जो बनी इसराइल का रवैया हुआ वो भी बता दिया, न शुक्रापन। और अल्लाह की रज़ा के काम क्या, हमें इसमें पता चले कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत दे तो न शुक्री ना कीजिए। आपको भी मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, एक एक नेमत को गिन गिन के अल्लाह ताला से कहा करें कि अल्लाह ताला, वो क़यामत का दिन जो इतना सख्त दिन आने वाला है, हमें उस दिन से पहले ही अपनी मामलात की इसलाह की तौफीक दे। आज दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा मैं कौन हूँ, आप कौन है, आपकी नीयत क्या, मेरी क्या है, लेकिन क़यामत के दिन बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे सबको दिखाया जाएगा। खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई आखिरत का गम है, फिक्रे आखिरत है, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मैं किस जगह आजमाई जाऊंगी। इन सारी सवाल जवाबों के बीच में अपना मुहासबा करना कभी ना भूलें। पढ़ने के दौरान, सुनने के दौरान हम मुहासबा अगर छोड़ देंगे ना, तो सिर्फ रीडिंग है,